ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से बात की और मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को क्रूर आक्रामक कार्रवाई बताया और इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से अमरीका को जिम्मेदार ठहराया।
ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने देश के 3 परमाणु संयंत्रों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। श्री अराक्ची ने चेतावनी दी कि इन हमलों के दुर्गामी परिणाम होंगे। अमरीकी हमले के कुछ ही घंटों बाद जारी बयान में ईरान ने अमरीका पर इजराइल के साथ तालमेल का आरोप लगाया। ईरान ने दावा किया कि अमरीका ने उसके उन शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए कल एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वो ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रखे हैं। ईरान ने आज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इसराइल पर मिसाइल हमले किए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने पुष्टि की कि ये हमले हाल ही में ईरानी क्षेत्र पर अमरीकी और इजरायली हवाई हमलों के जवाब में किए गए। इजरायली रक्षा सूत्रों के अनुसार ईरानी मिसाइलें लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। इस बीच ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत करीब 1,117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल रात मशाद से विशेष विमान 290 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इस प्रयास के लिए लोगों ने सरकार का धन्यवाद दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने रुके हुए नक्सल ऑपरेशन को तेज गति से शुरू किया। रायपुर में आज राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर के शिलान्यास समारोह में उन्होंने ये बात कही।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने 2 लोगों को हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। INIA ने बताया कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्करे तैयबा से संबद्ध थे। इस बीच NIA ने दिल्ली से CPI माओवादी उत्तरी क्षेत्र ब्यूरो के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति पर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों को फिर से चलाने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसी ने इसके कब्जे से कई डिजिटल उपकरण तथा आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। यह आरोपी उत्तर प्रदेश में मथुरा का रहने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष अप्रैल में 19,00,000 से अधिक नए सदस्य जोड़े हैं। ये पिछले महीने की तुलना में 31.31% की बढ़ोतरी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार नए सदस्यों में 2,00,000 से अधिक महिलाएं हैं। देश में निर्मित 17A स्टील्थ युद्धपोत INS नीलगिरी आज विशाखापत्तनम पहुंच गया। मुंबई में बने INS नीलगिरी का गृह बंदरगाह अब विशाखापत्तनम होगा और ये ईस्टर्न स्वॉर्ड सनराइज फ्लीट का अभिन्न अंग होगा। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में लीड्स में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान इंग्लैंड ने भोजनावकाश तक 5 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड अब भी भारत से 144 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी में 471 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।